श्लोक नंबर 5। अपने को संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं समझते हो, संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो ना? संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। इस समय संगम पर ही बाप और बच्चों का मेला और लोगों ने यह नदियों के मेले को संगम बना दिया है, तो यह किससे कॉपी की है? इस समय को कॉपी की है ना? और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं है? सबसे अच्छी विशेषता है कि संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है, तो विशेषता है ना? सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और फरसा मिला, सेवा की और सेवा के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो व कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्म किया, सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता है तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योगयुक्त कर्म व योगयुक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होगी। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, खाते हो? तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होती है? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होती है। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना? तो यह आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी। तो क्या कह रहे बाबा? सभी अपने को संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं समझते हो, संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो, संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष फल और आत्मा और परमात्मा का मिलन पर तो था ना मूर्ति में, जिससे हर आत्मा क्या हो जाती है?
ईश्वरीय।
ये है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिससे हर आत्मा उज्जवल हो जाती है। और क्या होता है संगम युग की विशेषता? महिमा, संतुष्टता और असंभव को संभव करने का युग, वरदानी युग, लीप युग, धर्माव युग, जमा करने का युग, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का युग और बाप से मिलन बनाने में भी पुरुषोत्तम युग, मौजों का युग, बाबा से स्वयं को भरने का युग सर्व खजानों से। और क्या विशेषता है संगम युग की? सबसे बड़ी विशेषता और क्या क्या विशेषता है इस युग का? सबसे छोटा युग है, टॉप का स्थान है ये। इसी युग में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है जो कभी नहीं हुआ था। इसी युग में ब्राह्मण परिवार मिलता है जो और कभी नहीं मिला था। और याद, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा करने का युग है। सारे कल्प का रिकॉर्डिंग अभी यहाँ होता है। और संगम युग के क्या नाम है? और गुप्त युग है, अलर्ट होने का युग, सावधान होने का युग, जागने का युग है, चढ़ने का युग है, निश्चिंत रहने का युग है, परमात्मा प्रेम में खो जाने का युग है, प्रभु संदेश देने का युग है। तुम संदेश वाहक हो, मैसेंजर हो, भाग्य बनाने का, भाग्य विधाता से जितना लेना चाहो उतना लेने का युग, या भाग्य स्वयं को भाग्यशाली बनाकर दूसरों को भाग्यशाली बनाने का युग,
परमात्मा के साथ हीरो पार्ट बजाने का युग,
परमात्मा के साथ साथ पार्ट बजाने का युग, हीरो पार्ट बजाने का युग। भाग्य विधाता को अपना बनाने का युग। और शीला बहन कौन सा युग है ये? अरे संगम का युग है ये, कॉन्फ्लुएंस एज। क्या हो रहा है इसमें? कुछ अभूतपूर्व घटनाएं इस युग की जो इतिहास चक्र में कभी नहीं हुई।
विश्व परिवर्तन
करने का युग है ये, और कोई समय नहीं है विश्व परिवर्तन का। सैपलिंग लगाने का युग है, देवी देवता धर्म की चांस लेकर चांसलर बनने का युग है, धर्म स्थापक बनने का युग है, और प्रभु पालना में पलने का युग है, पढ़ने का युग, रहने का साथ साथ रहने का युग, रहना चलना उठना बैठना,
निरंतर चढ़ती कला,
चढ़ती कला असेंडिंग स्टेज है यहाँ पर। और यहाँ पर कंट्रास्ट है, हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। भक्ति में क्या, भक्ति का फल प्राप्त करने का युग भी है, तो प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों सामने है यहाँ पर। और भी कुछ है, सर्वश्रेष्ठ युग, सबसे महान युग, त्रिकालदर्शी बनने का युग, त्रिनेत्री बनने का युग, परिवर्तन करने का युग, संस्कार परिवर्तन का युग है ये,
पवित्रता
धारण करने का युग है, पवित्र और योगी बनने का युग है। तो संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
बेहद का दोष बनने,
विश्व कल्याणकारी बनने का,
बेहद में जाने का युग,
हदों को छोड़ बेहद
में, युग में बेहद में नहीं
जा सकते, संग में रहने का, साथ रहने का, कंपनी में रहने का, उसे कंपेनियन बनाने का, बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है, मेला लगा है यहाँ। उनमें चुनते हैं शायद ना। सत्य युग है ये, सत्य ज्ञान प्राप्त करने का युग, सत्य परमात्मा से सत्य समय पर सत्य ज्ञान प्राप्त करने का युग। इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चों का मेला, और लोगों ने यहाँ नदियों के मेले को संगम बना दिया है, नदियों के मेले को संगम बना दिया, ये है नदियों और सागर का मेला है। तो यह किससे कॉपी की है? इस समय को कॉपी की है ना। और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं? सबसे अच्छी विशेषता है कि संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है, डायरेक्ट रिजल्ट, फल, फ्रूट। तो ये विशेषता है ना, संगम युग में, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला, सेवा की, और सेवा के साथ साथ क्या क्या मिल गया? दुआएं मिल गई, एक दुआएं आशीर्वाद मिल गई, और खुशी मिल गई, शक्ति मिल गई, सेवा करते ही क्या क्या मिल गया, संतुष्टता मिल गई, अतीन्द्रिय सुख मिल गया, दुआएं आशीर्वाद सब एक में, सेवा करते ही क्या मिल गया, प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ, सेवा की और तुरंत क्या चीज का नशा, तुरंत संतुष्टता, तुरंत दुआएं, तुरंत आशीर्वाद, तुरंत हल्कापन, डबल लाइट स्थिति, सहज बनने का युग। नहीं, अभी ये बताओ, सेवा करते ही क्या मिल जाता है? निस्वार्थ सेवा की तो क्या मिल गया, तुरंत मुख मुंह जो बंद था, जिस मुंह को भय था, गूंगा मुकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिम तत्प्रातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये परमात्मा कृपा जब हो जाती है तो मुंह का भी बोलने लगता है, पंगु लंगे थे गिरिम, पंगु भी चढ़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये सब नई बातें हैं कि सेवा की और आत्मविश्वास बढ़ गया, सेवा की और मुख खुल गया, सेवा की और खुशी मिल गई, अतींद्रिय सुख मिल गया, डबल लाइट स्थिति का हल्कापन का अनुभव हुआ, बेहद दृष्टिकोण हो जाता है। जो अपने आप में डूबे हुए थे अब थोड़ा बाहर निकले, दिल से सम्मान मिल जाता है, सम्मान देते भी और मिल भी जाता
है। में आने का मुख्य चांस है सेवा।
हाँ वो तो है, सेवा से और कुछ मिलता है? तुरंत इंस्टेंट, अभी अभी किया और अभी भी मिल गया। अच्छा, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास तो देहभान उससे थोड़ा सा दूर हो गया, वो भी हो गया सेवा से, और हो गया खुशी, अतींद्रिय सुख, डबल लाइट। यहाँ और एक चीज बोली, सुना अभी आपने, एक चीज नई चीज बोली अभी थोड़ी देर, नहीं, यहीं पर। लेकिन यहाँ तो सेवा के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो व कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का फल प्रत्यक्ष फल अनुभव होते हो। अगर कर्म किया सेवा की प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं हुआ तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म, योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख व डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होगी। बाप के गुणों के अनुभूति होना यह भी हो जाएगा सेवा की, और कोई ना कोई रहम दिल का भी भाव जागृत हो जाएगा, दातापन का भाव जागृत हो जाएगा, संपन्नपन का भाव जागृत हो जाएगा। हमको लगेगा ना हमको भी कुछ तो है, संपन्न है हमें तब तो दिया इसे लगेगा ना सेवा की तो सहनशीलता बढ़ जाती है थोड़ी। सहन शक्ति बढ़ गई ना,
प्रत्यक्षता भी करने
का तुरंत तुरंत रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट में तो ये इतनी सारी बातें हैं। तो यहाँ और एक चीज अभी बोली है कि अगर कर्म किया सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता है तो फिर चेक कर। सेवा तो कर ली परंतु कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, ग्रुप आया उसको समझाया पर बाद में खाली खालीपन, जैसे पता नहीं क्या था, दिल से नहीं किया, जैसे ऐसे ही कर दिया, मतलब रूटीन हो गया, कोर्स भी कराया फटाफट कोर्स करा दिया। समझाना था, रमेश भाई उदाहरण देते हैं ना, कोई एक माता थी उसको बोला कि प्रदर्शनी समझाओ, तो फोन आ गया घर से कि कुछ तो बुलाया है, तो फटाफट 5 मिनट में पूरा समझा के चली गई ये है, ये है, ये है, चलो फटाफट फटाफट कोर्स का बुक। तो उससे कुछ नहीं होता है, दिल से अगर सेवा नहीं हो तो अनुभव नहीं होगा। समझाया चाहे कोर्स कराना हो चाहे कहीं घुमाना हो, जबरदस्ती किसने दे दी भाई इसको समझाओ, तो फिर घुमाना हो समझाना हो कोर्स कराना हो चाहे मुरली पढ़ना हो पढ़ाना हो, ये सारी बातें जो भी सेवा की बातें हैं, अगर इसमें दिल से नहीं किया तो अनुभव नहीं होगा। तो बाबा ने कहा चेक करो क्यों फल नहीं मिला, क्या कारण है। यहाँ एक दूसरा कारण बताया, अगर कर्म में स्वार्थ होगा सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। सेवा में क्या स्वार्थ हो सकता है? वैसे तो स्वार्थ बहुत अच्छा शब्द है पर गलत हाथों में पड़ गया है स्वार्थ अर्थात आत्मार्थ, आत्मा के अर्थ धर्म अर्थात स्वार्थ, जो स्व के लिए किया जाता है, स्व के भाग्य बनाने के लिए, स्व के कल्याण के लिए आत्मार्थ जो किया जाता है, पर शब्द ऐसा है कि गलत हाथों में अच्छी चीज भी पड़ गई तो उसका नाम बदनाम हो जाता है, अनर्थ हो गया फिर वहां पर। तो मतलब हाँ, इसके लिए उसका आध्यात्मिक अर्थ ऊंचा है, पर हम एक्चुअली धर्म में तो स्वार्थ ही होना चाहिए। धर्म अर्थात स्वार्थ, अध्यात्म अर्थात ही स्वार्थ, स्वार्थ से ही परमार्थ होता है। स्व अर्थ जो कुछ किया जाता है, स्व के कल्याण अर्थ, ये उसका सबसे ऊंचा अर्थ है। स्व के कल्याण अर्थ, आत्मा के कल्याण अर्थ, स्वार्थ अर्थात आत्मार्थ, ये उसका वही कहा है ना, गलत हाथों में पड़ गया ना वो। तो सेवा में स्वार्थ की क्या गुंजाइश है, सेवा की परंतु स्वार्थ कहाँ कहाँ है, कौन से स्वार्थ है, सेवा के स्वार्थ, सौगात मिल जाए, क्या मिल जाए, सौगात मिल जाए। हाँ भाई, तुमने तो बहुत बढ़िया समझा है, थोड़ा ऐसा कोई कहता तो अंदर ही अंदर थोड़ी तो एक तो सम्मान, सौगात और ये काम, ये भी वो देहभान है। स्वार्थ, स्वार्थ कहाँ है, नाम की ना, सीधा कनेक्शन है नाम मान शांत, कि मेरा नाम हो जाए, लोगों को तो पता चले कि हम भी कुछ है, ये सबसे बड़ी इच्छा होती है ना, एप्रिसिएशन की जो इच्छा है ना, एक्नॉलेजमेंट, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले, एप्रिसिएशन मिले, प्रशंसा मिले, स्तुति मिले, लोग माने, लोग समझे, ये जो इच्छा है ये एक मूलभूत इच्छा कहीं ना कहीं छिपी हुई रहती है, अज्ञान काल में रहती है, ज्ञान में आने के बाद फिर दब जाती है और फिर निकलती है बाहर सालों के बाद, और तांडव नृत्य करती है फिर और नचाती है, यहाँ से वहां दौड़ाती है आत्मा को, इधर जाओ उधर जाओ, जितनी ज्यादा प्रशंसा उतना ही उपद्रव अंदर मचता है, फिर मैं का उपद्रव ऐसा भयंकर है कि रुकने नहीं देता एक जगह, यहाँ से वहां, ऊपर से नाम सेवा कर्तव्य और दया, अंदर से मैं फिर वो उसके रॉयल रूप में कहने के लिए ये हमारी जिम्मेवारी है, परंतु है सारा मैं का उपद्रव, वो दिखाएंगे नहीं किसी को, वो बताएंगे नहीं, वो अंदर की बातें हैं, अंदर जो चल रहा है वो कुछ और, बाहर दिखाने के लिए दूसरा। अंदर में तो आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से हटते ही दिल खाना चालू हो जाए, आत्मा जैसे ही नाम मान के थोड़े से भी इसमें आ गई और उसको प्रशंसा होने लगी, अध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी माया जो कहा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह को हटा, जब त्याग कर दिया, विजय पाली और सेवाओं में लग गए और सफलता प्राप्त होती है फिर, क्योंकि ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति है अंदर, उससे सफलता तो होगी ही, और वो सफलता में फिर सूक्ष्म माया का पदार्पण होता है, कि जहां पर प्रशंसा होने लगती है, नाम होने लगता है, तो वहां पर फिर अच्छा लगने लगता है, फिर आदि हो जाती, चस्का है वो भी एक वो भी एक एडिक्शन है, वो ही चाहिए फिर, जितना वो मान मिलता है फिर हम उतना और उसमें और ज्यादा वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, और वो उसके अगर वो चस्का लग गया कि फिर वो बाकी अच्छा नहीं लगता है, फिर वो वैसा ही चाहिए सब कुछ। तो हाँ, अपने अस्तित्व कहो या अपने लंबे समय के किए हुए ज्ञान और योग को भी बाजी पर लगाने को राजी हो जाता है, राजी हो जाती है आत्मा अपने उस सम्मान की रक्षा करने के लिए जो किया हुआ ज्ञान और योग है इतने समय का, जो एकांत था उस एकांत को भी दांव पे लगा देती है आत्मा, कि अब एकांत की जरूरत नहीं है, अब पब्लिक लाइफ, अब हमारी पब्लिक लाइफ है, जो पहले जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था, पहले जो प्राप्तियां होती, जो पहले जो योग की अनुभव होती, अभी वो सब लुप्त हो गए, परंतु वो दिखाएंगे किसको, अभी दिखा नहीं सकते, अभी वो सब अंदर है, परंतु आत्मा जब गिरती है नीचे तो अनुभव उसको होता है जरूर, अंदर से खालीपन रहता है जरूर, खोखलापन रहता है, परंतु बाहर की सेवाओं से उसको ढक देते थे, वो खोखला बन रहता है, जैसे दीवार में कोई छेद है ऊपर से लगा दिया, ऊपर से कुछ अंदर से तो है ही। तो सेवाओं में नाम की कामना, मान की कामना, दूसरा है मान, मान मिलना चाहिए। सब आगे वाली सीट, पीछे वाली सीट फिर बात ही नहीं है, सामने सीट चाहिए। कैंडल लाइटनिंग हुई, हमारा नाम ही नहीं है, अगली बार नहीं आएंगे। वो मुल्ला नसरुद्दीन करके उसपे बड़ी कहानियां है, छोटे छोटे चुटकुले। मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में, मुल्ला नसरुद्दीन गया तो एक सारे, वो जब आया तो सामने जगह ही नहीं उसके लिए, बड़ा दुखी हो गया वो कि मैं और सबसे पीछे बैठू, क्योंकि लोग पहले ही आके गए, ये तो लेट गया, और सामने एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और पूरा हॉल भरा हुआ, तो ये सबसे पीछे जाके बैठा। फिर इसने युक्ति रची, धीरे धीरे सब लोगों को अपनी तरफ करते गया, उधर वो चालू, इधर वो अपना भाषण चालू कर दिया, इधर उधर अच्छी अच्छी यहाँ वहां की चुटकुले बातें बता दी, तो एक पहली लाइन उसकी तरफ मुड़ी, फिर दूसरी तीसरी, सारों को अपने तरफ कर लिया। फिर सबसे आगे हो गया। तो जिसको ये मान चाहिए, अगर उसका कहीं अपमान होता है तो वहां ठहर नहीं सकती आत्मा, वो युक्ति रचेगा कुछ भी करके, अलौकिक अलौकिक रीति से युक्तियां रचकर सबको अपनी तरफ, कि मान की कामना ऐसी है कि मान के लिए व्यक्ति फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। वो जो यश का भी एक चस्का लग जाता है, यश कहो उसको या कहो जो भी कहो, सफलता वो अलग प्रकार की सफलता है, एक थोड़ी विकृत किस्म की, कि वो उसकी आदत पड़ गई तो वैसा ही चाहिए वो सफलता, अर्थात प्रशंसा टालिया, ये सारी जो है ना, ये एक बहुत ही सूक्ष्म माया है, इतनी सूक्ष्म है कि इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है, समझ भी नहीं पाती आत्मा कि यही माया है। उसका ये रूप इतना निराला है, इतना रोचक है, सुंदर है, कि इसे माया नहीं, ये तो नॉर्मल, इसको हम नेचुरल समझते, नॉर्मल समझते। तो मान की कामना, नाम मान, फिर शान, शान लगभग मान के समान ही, एक तो मान दूसरों से प्राप्त होता है, शान अर्थात हमारी शान, ये हमारी शान के खिलाफ है, हम लेक्चर देने जाए और बस में शांतिवन में, ना ना। हाँ वो थोड़ा तो वो थोड़ा चाहिए, मतलब नाम और मान और शान, ये कामना है। फिर फोटो, फोटो आना चाहिए, फोटो की बहुत बड़ी माया है एक फोटो, क्या नाम अमृत और क्या प्यूरिटी, मतलब क्या वर्ल्ड रिन्यूअल उसमें आया तो बड़ा अच्छा लगता है ना। राखी बांधते हुए कोई वीआईपी के साथ, ये बाबा ने कहा निराकार का क्या फोटो निकाल, फोटो नाम मान शान, ये एक और क्या क्या स्वार्थ है सेवाओं में, हमारा सेंटर तुम्हारा सेंटर, हमने हम इतना प्रोग्राम किया, हम उससे बड़ा करेंगे, वहां बाबा थोड़ा सा बाजू रह जाता है। सेवाओं में स्वार्थ, और भी कोई स्वार्थ है सेवाओं में, ये सेवा करेंगे तो बड़ों से प्रशंसा मिलेगी, आपने जो बोला ना सौगात कहो या फिर नाम, नाम होगा ना कि भाई ये बहुत बढ़िया सेवा करता है, अच्छी सेवा करता है, चिमन भाई बहुत बढ़िया सेवा करता है, ऐसा नाम होता है तो थोड़ा तो अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी सेवाओं को निस्वार्थ और निष्काम कर दे जाना, वैसे तो निष्काम बाप के सिवा कोई है नहीं, बाबा बोलते हैं हमेशा, परंतु फिर भी जितना हो गया उसको वहीं भूल जाओ, बस उसका कोई चिंतन नहीं, वर्णन नहीं जाता, कर दिया छोड़ दिया, बस उसका वर्णन और चिंतन और कोई प्रोग्राम हम बड़ा करते हो गया, प्रोग्राम कर दिया, अब आगे की सेवा करो। 10 दिन तक उसी की चर्चा चलती है। अगर सेंटर पर कोई बड़ा प्रोग्राम हो गया तो 10 दिन तक उसकी चर्चा चालू रहती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, इसमें बहुत लोग आए, उसमें कम आए, ये सब चलता है। लेकिन योग युक्त कर्म व युक्ति युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, एक्चुअल क्या है इसका, खुशी। जगदीश भाई कहते हैं ना, कहीं एक दो सेंटर पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां के वातावरण देखते हैं, नहीं देखते, क्या देखते हैं, बहने एक सेंटर की बहन दूसरे सेंटर, यहाँ का सोफा कैसा है, यहाँ के पर्दे कैसे है, यहाँ का वो डिजाइन कैसी है, यही देखते हैं। हमारे इधर भी ये होना चाहिए, कहाँ से लाइए वस्तु,
फोटो खींच के लेके जाते हैं।
हाँ, फोटो खींच के लेके जाते हैं, अभी हमारा सेंटर बनने वाला है। मतलब ये क्यों नहीं देखते कि यहाँ का वातावरण कैसा है, हम क्यों नहीं ऐसा वातावरण हमारे इधर बनाए, कहाँ खो गए हैं हम वस्तुओं में, साधनों में, वैभवों में। सेवा के नाम पर हम कुछ भी करने को तैयार है, नाम तो सेवा का ही रहता है। वो व्यक्ति का अभी कोर्स भी नहीं हुआ तो उसे तो सेवा में लगाने, मतलब जो सामने आ रहा है उसको ज्ञान देने से ज्यादा वो हैंड्स की ज्यादा आवश्यकता है, वो हैंड्स बन जाए बस, इस पर ज्यादा ध्यान है। अभी कोर्स भी नहीं हुआ पूरा, ये अभी अभी हुआ और तुरंत सेवा में लगा लेते हैं, उनको पालना कब दोगे, सेवा वो स्वतः करेगा, पहले पालना दो, शक्तिशाली बनो। बाबा ने तुरंत भेज दिया क्या दादियों को सेवा में, कितनी शक्तिशाली बनाया पहले, फिर बाद में कहीं भेजा। तो प्रत्यक्ष फल खुशी है, खुशी मिलना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख। अगर देहभान में आकर हम सेवा करते हैं तो उसमें भी अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है, डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है, बाप के जो भी गुण है उसकी अनुभूति। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, खाते हो तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाले उसको क्या अनुभूति होती है, सदा मन बुद्धि तंदुरुस्त। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते है? हेल्थ के लिए खाते है ना, तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी होना, कितने खजाने मिले, ज्ञान का खजाना, अभी ये बाबा यहाँ चेंज कर रहे टॉपिक, वेल्थ, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब खजाना है ना, या कोई है कोई नहीं है, इतना ज्यादा है जो दूसरों को भी देते रहेंगे। महादानी हो ना, रोज देते हो या कभी कभी देते हो, अखंड महादानी, निरंतर देते रहो, इतना खजाना भरा हो। इनफ एंड टू स्टोर, इंग्लिश में कहावत है, इतना हो दे भी सके और जमा भी कर सके, स्टोर भी कर, चाहे मनसा से दो, वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना जरूर है, ये तो सहज है ना, या चांस मिलेगा तो देंगे, क्या सोचते हो। अखंड हो ना, फॉलो फादर करने वाले हो ना, जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है, प्रश्न पूछा किसी ने, कहा अनलिमिटेड है, कहते ही तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड, बेहद है ना, हद तो नहीं है, सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति, बेहद असीमित अपरिमित, ऐसी खुशी, ऐसा नशा और ऐसी प्राप्ति, नशा खुशी और प्राप्ति। डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, किसी ने कहा पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर में तो आएंगे लेकिन और क्या करेंगे, अपने अपने स्थान पर जहां से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ। बाबा यहाँ कौन सी सेवाएं बता रहे, देखो कितनी सूक्ष्म सेवाएं बाबा बता रहे। बाबा को स्थूल सेवाएं अभी बहुत कम चाहिए, स्थूल सेवाधारियों की इतनी आवश्यकता नहीं है उसे, सूक्ष्म सेवाधारी चाहिए उसे, जो वायुमंडल को परिवर्तन करे, जो अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना दे, ऐसे सूक्ष्म सेवाधारी को आवश्यकता है। यहाँ 10 माताओं को बुलाओ तो 20 माताएं आ जाएगी रोटी में, वो सेवाधारी उसको अभी कम चाहिए, अभी उसे शक्तिशाली पावरफुल आत्माएं चाहिए जो वायुमंडल को परिवर्तन कर दे अपनी स्थिति से। तो ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ जो सब के सब अचल रहे, कोई हलचल में नहीं आए, स्थिति को शक्तिशाली बनाने वाली जो आत्मा है, जिनकी स्थिति शक्तिशाली, ऐसी आत्माओं की उसे आवश्यकता है। ये कर सकते हो, इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, एक भी ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष में यही देखेंगे, स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है लेकिन औरों को भी बनाना है, हिम्मत है ना। तो ये पांचवा ग्रुप यहाँ पूरा हुआ। बाबा ने संगम युग की विशेषता की नहीं, संगम युग में क्या होता है वो बताया। प्रत्यक्ष फल यहाँ प्राप्त होता है, सारे प्रत्यक्ष फल यहाँ पर गिनाए। और फिर वेल्थ के लिए कहा कि ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का सारे खजाने इतने हो कि हम संपन्न हो, प्रेम दिल दाता बने। और लास्ट में विदेशियों को क्या कहा, इस वर्ष क्या नवीनता क्या है यहाँ पर, वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बनाओ कि इस वर्ष हरेक ब्राह्मण हलचल में नहीं आए। अच्छा, ओम शांति।